ज्ञानमुक्तिवीरान्धस्य ज्ञानञ्जनसभाकया चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभद्रन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ना नाम्ने गौरतिजे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। मैं सर्वप्रथम श्री श्री राधा गोविंद को प्रणाम करने के बाद में अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद सुत श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात वैष्णवगण वैष्णवीगण, आज रामचंद्र जी का जन्मतिथि है।
वो कहा गया
श्याम श्याम कहा
है
रामचंद्र वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक रामायण माना जाता है। इस रामायण ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनकी बोली से भावना से उनके लेखनी से ऐसा मालूम होता है कि वो भगवान से कोई निरंतर नहीं। खूब सरल साधारण रूप में उनका जीवन चरित्र का विवेचन किया है, हम उसी से कुछ पाठ करके आप लोगों को सुनाता हूँ या बोलता हूँ। कथम सनत कुमाराय देवस्य नारद मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलितौ। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने देवर्षि नारद ने
Thank you.
नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधित धर्मों का किस प्रकार से वर्णन किया, दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं को किस क्षेत्र में लीन हुआ, वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा वह सब आप लोगों को हम लोगों को बतलाई। सूत जी ने कहा सनक आदि महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। ये वाल्मीकि भी नारद के ही शिष्य है। रामायण में राम की जो कथाएं हैं उसमें जो व्यक्त हुआ है वो श्रीमद् भागवत से ही लिया गया है। तुलसी कृत वाला ये नहीं, सनकादि महात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ममता और अहंकार में का उनमें नाम भी नहीं है, वे सब उद्धरेता ब्रह्मचारी है। मैं उनका नाम बतलाता हूँ जो ब्रह्मरेता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई अनादि माने गए हैं। इनका कहीं जन्म का उल्लेख अप्रकट का उल्लेख कहीं नहीं है, ये नित्य ही है। ये भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा है, ब्रह्म चिंतन में सब समय लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और अभिलाषी। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि को देखने के लिए मरु पर्वत के ऊपर में गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी बहती है, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने के लिए उतरे। सीता भी नाम है
गंगा जी का।
जल में उतरे ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद ऋषि भगवान के नारायण के नामों का नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण करते हुए बिना वादन करते हुए वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन जगेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु और आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करके संपूर्ण जगत पवित्र बनाते हुए लोग पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए। उनको आते देख करके सनकादि भाई यथार्थ रूप से उनकी पूजा की और तथा नारद ने उन मुनियों को भी सुनाया। हम सुन देखते हैं भक्ति देवी के लिए नारद जी भी घूमते घूमते द्वारका क्षेत्र में गए और वहां पर देवर्षि नारद ने पूछा और तब भक्ति देवी के पूर्ण होने के साथ साथ में उनके लड़कों को भी पूर्ण जीवन दान देने के लिए उनको भागवत की कथा सुनाई। फिर वही ये भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तदनंतर मुनियों की सभा में सनत कुमार जी नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार से कहा। सनत कुमार बोले, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सदा हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं। आपसे बढ़कर के दूसरा नहीं है। ओह, यू कैन टेल।
Sri Gurudev says, offered pranam firstly to Sri Radha Krishna and Sri Gurudev, and we are today getting a chance to hear Sri Ram Katha. Even though in the Ramayana, Valmiki has accepted Krishna as Bhagavan, still by his writings and his moods, he has given so much promise to Bhagavan Ramchandra. So today we'll hear from Valmiki Ramayana, where the character and glories of Ram are given in a very nice and simple manner. This Valmiki Ramayana is the discussion between the four Kumaras and Narad Rishi. And Suta Goswami is describing that history. The four mental born sons of Lord Brahma, they are called the Chatusna, or the four Kumaras. They heard from Narad the glories of Sri Ramchandra. Valmiki, who wrote this Ramayana, he is also a disciple of Sri Narad. Therefore, this katha of Ramchandra has been taken mostly from the Srimad Bhagavatam. The four Kumaras were very exalted personalities. There was no touch of material possessiveness or false ego within them. All four are without beginning. There is no recording of their appearance or their disappearance. And all four are the topmost brahmacharis. They are devotees of Lord Vishnu, though in the beginning it appears that they were Brahmavadis. So one day the four Kumaras, out of the desire to see Lord Vishnu, went to Mount Meru. There they took bath in the river Ganga. Another name for Ganga is also called Sita. Therefore, they took bath there. And as they came out of the water, they met the great sage, Sri Narad Rishi, who was chanting the names of Narayan, Narayan, Sriman, Sri Narayan. And this way, he was purifying the world by his Harinam Sankirtan. The four Kumaras are very happy to meet him and they worship him in the correct manner. Therefore, Narad Muni is wandering everywhere. In the Bhagavad Mahatmya, we hear how Narad also went to Dwarka. And there he met Bhakti Devi also. And how he revived the two sons of Bhakti Devi, Gyan and Vairagya, by speaking Bhagavad Gita to them. So the son of Kumar, representing his other three brothers, he was very pleased to meet Narad Muni. He did pranam and said, "Oh, Naradji, you are the best of the rishis. You are always absorbed in Bhagavad Bhajan."
Ram रामचरितमानस हैज टेकन सो मच फ्रॉम भागवतम नॉट वाल्मीकि रामायण.
उन्होंने कहा संक्षेप में आप रामायण की कथा बोलिए जिससे जगत पवित्र हो. नारद जी कुश के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचरण करके हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम के चरित्रों का वर्णन कर समाधि योग से व्यास जी ने भी पूरा भागवत देखा था. उसी प्रकार से यहां भी राम लक्ष्मण सीता राज्य राजा रानियों के सहित महाराज दशरथ से संबंध से जितनी बातें थी उनका हंसना बोलना चलना फिरना सबका महर्षि अपने योग धर्म के बलि भांति साक्षात्कार किया है. सत प्रतिज्ञ रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ में विराजते समय जो जो लीलाएं की थी सबका दृष्टि में आ गया. जो का आश्रय लेकर धर्मात्मा महर्षि पूर्व काल में जो जो घटनाएं हुई थी स्वयं को आंवले को हाथ पर लेकर के देखने से जैसा होता है ऐसा ही उन्होंने देखा. सबको प्रिय लगने वाले भगवान राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप में देखकर बुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने सबको महाकाव्य रूप देने की चेष्टा की. महात्मा नारद जी ने जैसे पहले वर्णन किया था उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि ने रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन काव्य के रूप में किया. जैसे समुद्र रत्नों की निधि है उसी प्रकार से यह महाकाव्य गुण अलंकार ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है. इतना ही नहीं यह संपूर्ण सारभू और अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण कानों को प्रिय लगने वाला और सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है. यह धर्म अर्थ काम मोक्ष गुणों के फलों से युक्त और विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने वाला धर्म अर्थ मोक्ष तो ये है. मेरे विचार से ये भक्ति का दान करने वाला है वो भी उत्तमा भक्ति का. श्री राम के जन्म उनके महान पराक्रम सर्व अनुकूलता लोकप्रियता क्षमा सौम्य भाव सत्यशीलता महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया. विश्वामित्र अब उसका वर्णन कर रहे हैं रामचंद्र जी का जन्म से पहले महाराज दशरथ जी को पुत्र नहीं था। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन्होंने प्रत्युष्टि यज्ञ की, उससे चारु निकले, रानियों को कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को आधा भाग, सुमित्रा को एक भाग। फिर सुमित्रा को नहीं दिया, फिर कौशल्या जी ने अपना भाग और कैकेयी ने अपना भाग बांट करके एक एक भाग दे दिया। इसलिए उनको दो पुत्र हुए और उन लोगों को एक एक पुत्र हुए। राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठती थी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बैठती थी। आप लोग जानते हैं कि उस चोरू को खाने से कौशल्या जी को एक लड़का राम और कैकेयी को भरत, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कुछ दिनों के बाद में गुरुकुल में गए, वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में उन्होंने विद्या अर्जन किया और सारी विद्याएं सीखी, बड़े कष्ट करके उनको सिखलाया फावड़ा कैसे चलाया जाता है, टांगी काटने का कैसे व्यवहार होता है, ये सब व्यवहार बतलाए। इसके बाद में जब और कुछ बड़े हुए तो ये लोगों को विश्वामित्र बुलाने आए, महाराज से बोले, महाराज दशरथ मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, मांग लीजिए कोई भी बात नहीं, प्राण मांगेंगे तो प्राण दे दूंगा, प्राण तो नहीं मांगूंगा किंतु उससे कम नहीं।
प्राण के प्राण मांगूंगा।
नानका जी मांगिए, मैं राम और लक्ष्मण की जोड़ी चाहता हूं। किस लिए? वहां पर मैं यज्ञ कर रहा हूं और ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े राक्षस आकर बाधा देते हैं, यज्ञ को बंद कर देते हैं, उसमें पेशाब पैखाना कर देते हैं। मैं रक्षा के लिए चाहता तो मैं चलता हूं अपनी सेना के साथ, आपको मैं नहीं चाहता। देंगे कि नहीं बोलिए, महर्षि वशिष्ठ जी वहीं पर थे, संकोच मत कीजिए, आपका भी इसमें कल्याण होगा, आप राम लक्ष्मण को दे दिए। राम लक्ष्मण को लेकर के चले, राजा ने कुछ गड़बड़ की, शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न को ले दिया। विश्वामित्र जी ने पूछा जी किधर से चलेंगे, इधर से भयंकर है भाग ये शत्रु है और इधर से सीधा रास्ता है किंतु दूर का है। उन्होंने कहा जी अच्छा है यही दूर से ही चलेंगे, लौट करके चले आए। उस समय में उन्होंने कहा कि ये राम लक्ष्मण ने ये उनको चुरा करके रखा है, अपने छोट ये इन लड़कों को दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया था, वशिष्ठ जी ने समझाया तुम्हारा कल्याण होगा महाराज, आप इसको जरूर दीजिए। ये साधारण नहीं विश्वामित्र मुनि है। तब कहने से राम लक्ष्मण को इनसे भी पूछा थोड़ी दूर जाने के बाद, इधर से दूर का रास्ता है किंतु सीधा सरल है, और इधर से रास्ता भयंकर, इसमें शत्रु आएंगे तो इधर ही से चलिए, जिधर से शत्रु भयंकर है का जहां और ठीक है। वहां पर गए तपोवन में, देखा सुबाहु और मारीच दो वहां रहते थे, रावण के ये पहरादार थे।
ताड़ू का राक्षसी
तो सुबाहु आई, उसको तो एक ही बाण में रामचंद्र जी ने मार डाला। रास्ते में विश्वामित्र जी ने उनको धनुष बाण की पूरी शिक्षा दे दी थी। फिर जब निकट आए तो ऋषियों कहा जी आप लोग यज्ञ कीजिए। उस समय मारीच आया, उन्होंने ऐसा बाण मारा कि वो जाकर के समुद्र पार लंका में जाकर के गिरा। तब से वो जानता था कि राम कैसे बलि हैं, इसलिए वो हिरण नहीं बनना चाहता था। किंतु रावण कहा जी या तो हमारे हाथ से मरो या उनके हाथ से मरना तुमको जरूर है। तब रावण कहने से रामचंद्र जी के हाथों से ही मरा। इसके बाद में जब वहां का यज्ञ समाप्त करवा दिया तो वो चले गंगा जी के रामरेखा घाट, चरित्र वन है, वहां पर ये कुछ घटनाएं हुई थी। वहां पर अभी भी इतना दिन हो गया, गंगा किनारे में जबकि बाढ़ आती है तो कट जाता है, उसमें अभी भी बड़े बड़े कुंड हैं, और उस कुंड में चले हुए जौ घी इत्यादि निकलता है। गंगा के ठीक धार पर है। फिर वहां से अहिल्या नगरी,
अहिल्या बोली
अहिल्या
गौतम की पत्नी,
नहीं ठहरो, अहिल्या उसका नाम ही है अहिल्यापुर,
अहिल्यावली
वहां गए। देखा कि यहाँ बड़ा सुंदर वन है किंतु रहता कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऋषि रहते थे गौतम, एक बार इंद्र और चंद्र दोनों आए और वेश बना लिया गौतम का इंद्र ने, और चंद्र पर रास्ता में देख करने लगे जो और तो कोई नहीं है। उन्होंने जोगबल से जान लिया भी तो भी उनके साथ में दुराचार काम किया। जब ऋषि आए तो जान गए, स्नान करके आए गंगा, अभिशाप दे दिया जाओ तो पत्थर हो जाओ। तब उनके चरणों में पड़ी जी हमारा कल्याण कैसे होगा, पर जब रामचंद्र जी आएंगे पैर से छुएंगे तो तुम्हारा उद्धार पवित्र बन जाए। तो ऐसा ही हुआ, रामचंद्र जी ने पैर से छू दिया और उसमें बड़ी सुंदर एक महिला निकली, और राम की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके और तब चली गई जहां उनके पति हैं पति लोग। इस प्रकार से हाँ
Therefore, the four Kumaras asked Narayan to speak Ram Katha. By that Ram Katha, the whole world will be purified. So Sri Narad Rishi sat on an asana made of kush grass, and after worshipping the Lord appropriately, he placed his mind into Bhakti Samadhi. Just like Vyasadeva, by his Bhakti Yoga Samadhi, he saw all the Leelas and wrote Bhagavatam. Therefore, by his Bhakti Yoga Samadhi, Naraji saw all the pastimes of Lord Ram. He saw Ram, Lakshman, Sita, along with Dasarath Maharaj and his queens. And he directly saw all the pastimes of Ram, just like one sees an amla fruit in his hands, means from all directions. Valmiki described that same katha that was spoken by Narad to the Chatusna in a poetic form. That Ram katha is very dear to the ear and very attractive to the heart. Ram katha bestows all types of dharma, artha, karma, moksha. But Guru Maharaj says, according to his conception, really, Ram katha bestows bhakti. Therefore, before the birth appearance of Ramchandra, Dasarath Maharaj had no children. Therefore, on Dasarath Maharaj's behalf, Srisinghi Rishi performed a putrasthi yagya, a fire sacrifice to enable one to have children. From that yagya, a great personality appeared who had some charu in his hand, some sweet grass. Half was given to Kausalya, half was given to Kaikeyi, and none was given to Sumantra. But Kausalya and Kaikeyi bestowed a portion of their charu to Sumantra, therefore she had two children. Therefore Ram and Lakshman were inseparable, in the same way Bharat and Shatrughna were also inseparable. From Kausalya's womb appeared Ramchandra, from Kaikeyi's womb appeared Bharatji, and from Sumantra's womb appeared Lakshman and Shatrughna. Therefore the four brothers, they went to the Gurukula of Vishwamitra, and there was Vasishtha, and with great difficulty he taught them everything. One day Vishwamitra appeared in the Darbar, the court of Dasarath Maharaj, and said, "Oh, I want to request you for something." Dasarath Maharaj said, "If you want, I can give my life." Then Vishwamitra said, "I don't want your life, I want your two sons, Ram and Lakshman. Because I am performing yagya with the other rishis, and demons are coming and defiling the yagya by passing stool here and there." Therefore, Dasarath Maharaj was not willing to give his two sons, Ram and Lakshman. He said, "I will go with my whole army, but do not take my sons, they are very young." Therefore, Vasishtha, he said, "Oh, don't delay. Vishwamitra is not an ordinary personality. You should fulfill his desire immediately." Therefore, Dasarath Maharaj, he tried to cheat the Rishi, Vishwamitra, by giving his other two sons, Bharat and Shatrughna, in the place of Ram and Lakshman. So when they were coming on the path with Vishwamitra, then Vishwamitra asked, "There are two paths we can go. This path is a very short path, but there is very powerful enemies there. And the other path is a long path, but there is very easy to travel." So Bharat and Shatrughna said, "We'll take the long path." Then Vishwamitra, he returned back to Dasarath Maharaj and said, "Oh, don't try and cheat me." Then Vasishtha Rishi encouraged Dasarath Maharaj, "Oh, don't think Vishwamitra is an ordinary person. He will protect your sons in every way." Therefore Dasarath Maharaj gave his two sons, Ram and Lakshman, again into the care of Vishwamitra. And when they came to the same intersection, "Which path shall we go?" Then Ram said, "We will go by the difficult path, even though there are demons there." Then Vishwamitra was very happy. "Yes, this is Ram and Lakshman." So on the way through Tapovan, they killed the great woman demon, Tarak. And there in Tapovan, the rishis were performing yagya. Subahur and Marich used to pass stool and urine and ruin the yagya. So when they came to defile the yagya, Ram killed Subahur with one arrow. And with another arrow, he threw Marich into the ocean near Lanka. From that time, Marich had a great fear of Ram. Then when Ravan approached Marich and said, "I want you to become a golden deer to cheat Ram so I can kidnap Sita," then Marich was not agreeing at all. Then finally Ravan grabbed him. "Either you die by my hands or you die by the hands of Ram." then Rich thought, I'm going to die anyway. If I die by the hand of Ram, I get liberation. If I die by the hands of Ravan, I don't get any benefit at all. Chalo. So, on the way after that, they were going, they passed through the ashrama, the one kund is there. So even today, from that kund there is burnt ghee and rye grains and things like that coming.
Ganges, when Ganges due to flood, cutting one side or other side, then in the form of art.
Iske baad mein.
On the way they also passed through Aholi Valley, the village where Aholi had been cursed by Gautam Rishi to take birth as a stone. Indra and Chandra had both agreed to cheat Gautam Rishi. Therefore Chandra, the moon god, he was guarding the path to make sure Gautam would not come, and Indra appeared as Gautam Rishi in the disguise of Gautam Rishi and enjoyed Ahalya. When Gautam Rishi came, he cursed her, become stone. She said, how will I be delivered? When Mahajana Purushottam Ram touches you with his feet, then you will be delivered. And so it happened.
Iske baad mein Ganga ko paar kiya. मिथिला में पहुंचे वहां शंकर जी का एक धनुष था। एक दिन सीता ने, जगत नंदिनी सीता ने धनुष को पाए हाथ से उठाकर और उसको पोत दिया और उनकी पूजा की चली गई। महाराज दशरथ ने देखा ये धनुष तो बड़ा भारी है, उठाना सहज नहीं है, तो जो उस धनुष को उठाएगा कोई भी हो, मैं उसके साथ में सीता का विवाह दूंगा। बड़े बड़े राजा लोग आए, थक गए, कोई उसे टस से मस नहीं कर सका। रावण आया रात में और उसको उठाया तो दब गया, उसी धनुष के नीचे ही एक किनारे में दब गया। बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से छूट करके निकल करके भागा, फिर नहीं आया। बड़ा सूर और बड़े बड़े उस समय के जितने असुर भी, दैत्य भी, देवता भी लोग आए, नहीं उठा। रामचंद्र जी ने जब देखा कि सब राजा लोग थक गए हैं, 10,000 राजा एक साथ लग करके उठाए, तभी नहीं उठा। तब महाराज
जनक
विश्वामित्र की आज्ञा लेकर रामचंद्र जी धीरे धीरे बढ़े, धनुष को प्रणाम किया और इतनी जल्दी उसे उठा लिया, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को पैर से दबा दिया और उन्होंने एक देखते पलक गिरते गिरते ही उसे उठा लिया और उसका घुड़ा चढ़ाने में डोरी चढ़ाने में वो धनुष टूट गया। टूट गया तो बड़ा शब्द हुआ, उसी समय में परशुराम जी आए, जल्दी से बताओ इस धनुष को कौन तोड़ा, मैं आज उसका ध्वंस करूंगा, फरसा उठा करके अजय काट काट करके खत्म कर दूंगा। महाराज वहां पर जनक जी थे, डर के मारे कांपने लगे, राजा लोग भाग गए वहां से, वो लोग भी प्रणाम करके उनके चरण छू करके और एक तरफ में बैठ गए और वो बार बार कुठार दिखाते। लक्ष्मण जी उठ गए, रामचंद्र जी के तरफ में देख करके उठे और बोले, इस प्रकार की धनुषिया धनुइया तो हमने बचपन में कितनी तोड़ी,
तब तक गुस्सा नहीं किया,
अब तो वो और बिगड़े, फिर से लेकर के मार दूंगा तुमको, राम का भाई जान करके छोड़ दिया, नहीं तो तुमको मार डालता। बतलाओ किसने किया। रामचंद्र जी ने कहा जी इस पर क्यों बिगड़ते हैं, बार बार बिगड़ने लगे और उनकी शक्ति कम होने लगी। रामचंद्र जी ने अंत में उनको कहा मैं ही आपका वो दोषी हूं। तो परशुराम जी ने कहा जैसे ये धनुष तोड़ो तो मेरी शंका चली जाएगी, तो उन्होंने दिया धनुष की झट चढ़ा दी, बोले जैसे कहा दो आपका कर्म फल खत्म कर दो या आपको खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा जो हमारा बाण अव्यर्थ है, जरूर काम करेगा, कहीं हमारे कर्म फल खत्म कर दे, किंतु मुझे मारिए मत। तब उन्होंने धनुष से उनके कर्म फल काट करके और राजस्थान में पहुंचा और वहां पर सारा रेगिस्तान बन गया। फिर इसके बाद में वहीं पर श्री राम की सीता से साथ में विवाह हुआ। उर्मिला महाराज दशरथ तो उनकी जनक जी की, और संवाद पहुंचा एक नाई लेकर के जाता था संवाद, महाराज दशरथ की सभा में गया और बोला महाराज रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, आपको महाराज वशिष्ठ जी ने बुलाया है वहां।
विश्वामित्र
जी ने बुलाया, सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उसको थाल में अलंकार भर करके और उनको देना चाहा नारी को, ये शुभ संवाद तुमने सुनाया। नारी ने कहा कि वो तो हमारी बेटी लगती है, हमारे गांव के जितने हैं सबकी बेटी है, तो बेटी को क्या यहाँ का कोई चीज लेना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे लूं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और साजी सेनाओं को लेकर के वहां पर पहुंचे। सीता जी का विवाह हुआ राम के साथ में, उर्मिला का हुआ
लक्ष्मण जी
भरत के साथ में,
लक्ष्मण
जी के साथ, और
मांडवी भरत
और
सुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ। हाँ।
इस तरह से शादियां हुई। उसके बाद में वहां से लौट करके आ गए। महाराज दशरथ जी ने एक दिन बड़ी सभा बुलाई और बुला करके कहा मैं बूढ़ा हो गया, रामचंद्र सब गुणों में योग्य है, प्रजाएं भी उसको चाहती हैं, इसलिए उसको राजकुमार की गद्दी देना चाहता हूं, मैं अब जंगल में चला जाऊंगा भजन करूंगा। रामचंद्र जी ने कहा जैसे ऐसा मत कीजिए, जब तक आप हैं तब तक आप ही रहेंगे। उन्होंने कहा जी हमने प्रतिज्ञा कर ली है, अब हमको जरूर जाना है। इतने में कैकेयी आ गई, समाचार मिला जे राम को राजगद्दी मिलने वाली है। कैकेयी सुन करके मंथरा के मुख से
बड़ी प्रसन्न हुई और सोने का नौलखा हार दे दिया। अरे बेवकूफ, तुमको बचपन से जानती हूँ, राजा राम होगा, कौशल्या राजमाता होगी और तुम होगी दास, भरत होगा दास, उसका पुत्र होगा। ऐसा सिखाया पढ़ाया मंथरा ने। उस समय में भरत जी शत्रुघ्न निहाल गए थे, वहां से जब आए तो देखा न राम है न महाराज दशरथ है न सीता है न लक्ष्मण। सुना तो बड़े क्रोधित हुए, बोले जे तू हमारी माँ स्त्री महिला नहीं होती, रामचंद्र जी हम पर नहीं बिगड़ते तो मुझे आज ही काट देता, किंतु जाओ तुम आज से तुम्हारा माता और पुत्र का संबंध सदा के लिए चुप है। इसके बाद में अंत में कैकई ने दो बार मांगे, पहला जबकि रामचंद्र जी महाराज दशरथ कहीं गए हुए थे
स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में गए थे युद्ध के लिए,
वो शिकार खेलने गए, देर हो गई शाम, उसी समय में जब देर हो गई तो महाराज उनके यहां कैकई, उनके मित्र थे कैकई के पिता, ठहरे। महाराज जी ने कैकई को उनको सेवा में लगा दिया, उसने बड़ी निपुणता के साथ में उनकी सेवा की। सवेरे होने पर महाराज दशरथ ने कहा मैं आपसे आपकी कन्या को मांगता हूं, उन्होंने तो मैं नहीं देता, मैं तो उसी को दूंगा जिससे कि इसका विवाह होने वाला है, इसका लड़का राजगद्दी पर बैठेगा तब दूंगा। तो महाराज दशरथ हंसने लगे जी हमने तो 360 रानियों के साथ में विवाह किया, किसी को पुत्र नहीं, इसी को हो गया तो बड़े आनंद साथ में वही बैठेगा, वो क्या जानते थे ये 4 पुत्र होंगे। उन्होंने दे दिया, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ को ले गए, उसकी धूरी कट गई, उस समय उसने अपने हाथ पर उठा लिया रथ को कैकई ने। राजा ने कहा कि बर मांगो दो, एक तो रथ की धूरी कट जाने पर तुमने उठा लिया और नहीं होने समय जीतता नहीं, उन्हें कहा समय आने पर मांग लूंगी, मुझे बर की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब आप बार बार जीत कर रहे हैं उस वही कैकई को करना था, ठन गई। जो तुमको या तो वर दे दो और नहीं तो जो कुछ भी हो जाए। अंत में महाराजा जी ने महाराज दशरथ ने राम को बुलाया, राम गए, अपने मुख से कुछ नहीं बोले किंतु कैकई ने कहा, कैकई के कहने से भी राज्य को छोड़ दिया। इनके की भांति सीता और लक्ष्मण को लेकर के चले गए वनवास में। इधर राम नहीं लौटे तो राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया। इसके बाद में रामचंद्र जी निषाद राज गुह आकर के उन्होंने कहा कि आपका पिताजी ने राज्य दिया है, ले लिया, भरत को दे दिया, मैं अपना राज्य आपको दे देता हूं, आप रहा यहां का राजा हो। राम ने कहा कि पिता का वचन मानना है। वहां से चित्रकूट आए, उधर भरत जी जब घर पर आए शत्रुघ्न, तो राज्यपाल छोड़ करके बोले जैसे मैं रामचंद्र को बुलाने के लिए जा रहा हूं। वो सारी सेनाओं को लेकर के चले। जब निकट पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने देखा जो भरत आ रहा है, उन्हें धनुष बाण उठाया, भैया आपको मारने के लिए आ रहा है भरत, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। राम ने कहा ये सोच विचार करके काम करना चाहिए, भरत को तो नहीं जानता, भरत कैसा है। तब उतरे और लक्ष्य करने लगे ये क्या होता है। जब वहां पर पहुंचे भरत जी ऊपर पहुंचे, नीचे ही रख दिया चित्रकूट के नीचे हाथियों को, घोड़ों को, सेनाओं को, और माता जी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों, महाराज वशिष्ठ, ये सब लोग वहां पर आए भरत जी के साथ। भरत जी ने उनको प्रणाम किया और उस समय में रामचंद्र जी ने कहा और भरत जी ने उनको मनाया कि आप सिंहासन आपका है, आप ही का रहेगा, आपके अतिरिक्त दूसरा इस पर नहीं बैठे, आपका मैं राज्याभिषेक करने के लिए गंगा और सब समुद्रों का जल मंगा करके रखा। उसी समय में महाराज जनक जी आ गए। जनक ने कहा महाराज वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के जाने के बाद में नौका डूब रही थी अयोध्या की, अब जनक जी आए हैं, अब सबका कल्याण होगा, जिसका जो उचित होगा भाग वो मिलेगा। जनक जी ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और प्रणाम करके देखा राम के तरफ में देखा। राम ने कहा कि मैं आप जो कुछ आदेश देंगे, आप पिता भी है गुरु भी है, और भरत की तरफ में देखा कि हम भी मानेंगे। राम ने महाराज जनक जी ने देख करके बोले भरत की जीत हुई। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, भरत जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, माताएं प्रसन्न हो गई। किंतु कहा जे किंतु प्रेम की भी मर्यादा होती है, समुद्र है प्रशांत सागर, उस समुद्र डूब जाए एवरेस्ट डूब जाएगा किंतु हटेगा नहीं। राम इतना धुरंधर है, धर्म का मानने वाला है, पिताजी ने आदेश दिया है, इसलिए वो अभी तो तुम देख रहा था कि मैं प्रसन्न हूं, अब तुम अपनी सब प्रसन्नता छोड़ करके अब ये देखो जो महाराज श्री रामचंद्र जी कैसे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भरत जी आपकी तो जीत हुई है, मैंने राज्य ले लिया और 14 वर्ष के लिए आप जाकर के हमारी राज्य को सुरक्षित रखिए। भरत जी उनकी पादुका दी चले गए और ये आगे बढ़े।
translation.
Translation.
So after delivering Aholya, Ram Lakshman and Sri Vishwamitraji went to Mathila. There Janak Maharaj had kept one bowl of Lord Shankar. One day Janak Maharaj saw Janaki Nandan, Sita Devi, she was cleaning that bowl, and with her left hand she lifted it and swept beneath it, worshipped the bowl and then went away. So Janak Maharaj was thinking, only someone who can break this bow is qualified to marry my daughter. Sita was so beautiful, many, all the demigods, the daityas, as well as thousands of kings came to try to win the hand of Sita. At night time, Ravan also came, in the middle of the night when no one was around. He lifted the bow, but it fell again on his fingers, and he was crying with great difficulty. He managed to escape. All the kings tried to lift the bow, but they could not because it was so huge. Finally, 10,000 kings combinedly could not lift the bow. Then Ramchandraji, he stood up and looked towards Vishwamitra, who blessed him. And see, Ramchandra came. And when he picked up the bow, when he strung the bow, and when he pulled it, and when he broke it, was done in 1 second. A huge sound came. And hearing that sound, Parasuram came, who has broken the bow of my guru. Again and again, Parasuram was shaking his axe. Janak Maharaj was shaking. All the kings were afraid. Some of the kings ran, but the others did pranam, declaring the names of their fathers. Who has broken this bow? Who has broken this bow? Parasuram was shaking his axe. Then finally Lakshman, he looking towards Ram, he said, "Oh Rishi, when we were children we broke so many bows, that time you were not angry. What you're so attached to this one for?
Old one.
This old one." Yeah, in many ways, Parasuram became very angry. "I'm not killing you because you're a child and the brother of Ram." And so much argument was there between Ram and Lakshman. Then finally,
Lakshman and Parasuram.
So finally, Parasuram was thinking, who has the strength to break this bow? He must not be an ordinary person. So he gave his own bow of Lord Vishnu to Ramchandra. "If he can draw this, this is proof that he is my lord and master." So Lord Ram drew the bow and said, "This arrow cannot be, it must have some benefit, it must be used. Therefore I will take the result of your tapasya, your karma foul, or I will kill you. What do you want?" Then Parasuram said, "Please don't kill me. Please take away my karma foul, my fruitive activities." So Ramchandra at that time also took all the potency of Parasuram and he went towards Rajasthan to perform austerities. Since that time Rajasthan became a desert. When the marriage of Sita and Ram was fixed, one Barba was sent as a message to Ayodhya to invite Dasarath Maharaj for the wedding. So when the Barba announced, "Ram has broken the bow, he will now marry Sita, please come." Then Dasarath Maharaj was very happy. He wanted to give so much gold and ornaments to the Baba. But the Baba said, "How I can take something? Janakinanda and Sita Devi is like the daughter of everyone. I cannot take any wealth from you." Therefore Dasarath Maharaj was very pleased by this. And everyone went to Mathila and they had a big festival there. That time not only Ramji married Sita, but Lakshman married Urmila. Satrughna married Sutakriti. And all four brothers were married at that time. Sometime later, Dasarath Maharaj said, "I am old, I want to go to the forest and do bhajan." Ramchandra said, "It's not necessary for you to go. As long as you are alive, you please be king." Then Dasarath Maharaj said, "No, I have taken a firm vow that I will give the kingdom to you and I will take vanaprast." That time, Mantara, the assistant, the dasi of Kaikeyi, she came and told the news, "Tomorrow Ramchandra will be king." Kaikeyi Devi was very happy and she went to give one necklace, expensive necklace, to Mantara. But Mantara threw it on the floor. "You fool Kaikeyi, you don't know, but I know you since birth. Tomorrow Ram will become king and you will become Nokrani. You will become the servant of Kausalya." So Mantara changed the mind of Kaikeyi. Kaikeyi had received two benedictions from Dasarath Maharaj. When the devas were fighting with the demons, Dasarath Maharaj fought on behalf of the demigods. That time when the wheel of the chariot was falling off, that time KK kept the wheel on the chariot and therefore enabled Dasar Maharaj to achieve victory. Also, she saved his life. Therefore, he gave her two benedictions. So the two benedictions that she chose, Ram, Bharat will be king, and Ram will go to the forest for 14 years. Dasarath Maharaj, how he came in contact with Kaikeyi, there's a history also. Dasarath Maharaj had married 365 queens, but he had not had any children. So one time he went towards Afghanistan side, he was hunting, and he stayed in the night at the palace of his friend, who is the father of Kaikeyi. Kaikeyi served Dasarath Maharaj very expertly, and he was so pleased that he asked, "Her father, please, I give your daughter to me in marriage." But Kaikeyi's father said, "I will give her to marry on one condition, that the son from her womb will be king." And Dasarath Maharaj was very happy. "I have married so many times, but I have no son. So if Kaikeyi produces a son, it's a matter of great happiness. Of course he will be king." Therefore, to fulfill, therefore, Kaikeyi, she took these two benedictions. Dasarath Maharaj, he had to agree, and Ramchandra went to the forest with Lakshman and Sita. When Ramchandra came to in the morning for the Abhishek to become king, Dasarath Maharaj could not speak, go to the forest. Therefore, Kaikeyi told everything to Ramchandra. And when Ram left, Dasarath Maharaj, like a fish out of water, he cried, "Ram, Ram," and left this world. In the forest, Ram met Guya, who was the friend of Dasarath Maharaj. When Guya heard everything, he said, "Oh Ram, you should take my kingdom. You can become king." Then Ramchandra said, "No, this will disobey the order of my father. I cannot agree." When Bharat returned, he saw there was no Lakshman, no Sita, no Ram. And when he heard that his mother Kaikeyi had Ram thrown out of the kingdom, he vowed, "I will never call you mother again. The relation as a son to a mother has now been broken." So Bharat, in order to call Ram back from the forest, he took the entire army to Chitrakoot. When Lakshman saw the army approaching, then Lakshman became very angry. He took his bow. "I vow today I will destroy Lakshman and the whole army." Then Ramchandra said, "You don't know the heart of Bharat. He is very great. He can never betray me. So you should think first and then act." So Lakshman was watching what happened. So Bharatji, he left the entire army and he came with Kaikeyi, Kausalya, Vishishtha Rishi, Janak Maharaj and a few others. And that is the meeting of Ram and Bharat there in Chitrakoot. There was a great meeting and Bharat had the intention to bring Ram back to Ayodhya. Therefore Bharatji said, "Oh Janak Maharaj, now our father has disappeared and the boat of Ayodhya is about to sink. Therefore, only you can save us. Therefore, please, you convince Ram to come back to Ayodhya." So there's a big meeting. Then Janak Maharaj, he meditated on his Guru Shankar, and he gave his decision. "I think that Ram is the victor." And everyone became very happy. Bharat is the victor. Bharat is the winner. Everyone became very happy. He said the prema of Bharat is like an ocean. It's completely covered the Everest-like Ramchandra. But even though Ramchandra has been defeated by the prema of Bharat, still, like the mountain covered by the ocean, the mountain does not move. Ram is also very fixed in his desire to follow Dharma. "Therefore, Bharat, do you know what is prema?" And Bharat was thinking, "Oh Gurudev, you tell me. Prema means how to please Ramchandra. You have not tried to fulfill the desire of Ramchandra. You are trying to fulfill your own desire to bring Ramchandra back to Ayodhya." Then Bharat began weeping, "Oh Gurudev, really you have opened my eyes to what is prema." Therefore Bharat completely fell at the feet of Ramchandra and surrendered. "Oh Ramchandra, please tell me your desire." Then see Ramchandra said, "My desire is that you take my kingdom and you look after it for 14 years while I am in Vanaprastha."
भारत जी रामचंद्र जी की खानाओं मांग कर सिर पर धारण कर नंदीग्राम में गए और राज्यपाट सब खड़ाऊक से पूछ करके तप करते। एक बार उनकी माँ वहां गई, बोली जी एक बार तुम बेटा कह दो। कहा महारानी और जैसा मांगते हैं वैसा जो कुछ मांगना है मांग लो, अन्यथा माँ के साथ में तो हमारा संबंध टूट गया। वो लौट गई अंत में। इधर रामचंद्र जी दंडकारण्य पहुंचे, महाराज अगस्त ऋषि से भेंट किया और उनसे बाण सीखा। इसके बाद में उसी बाण से मारा था तो रावण मरा था। सूर्पणखा आई, मैं तुमसे शादी करूंगी। रामचंद्र जी ने इशारे से कह दिया इसका नाक कान काट लो। इसके बाद में खर और दूसर और त्रिशिरा ये सब का वध रामचंद्र जी ने किया। इसके बाद में मारीच को बुला करके अपनी बहन का ऐसी दुर्दशा की है, उसने कहा कि रामचंद्र जी की स्त्री बड़ी सुंदरी है, उसको मैं लेने के लिए गई थी तुम्हारे लिए, किंतु उन्होंने हमारा कान और ना कान लिया। तो मारीच को बुला करके उसे परामर्श करके और रामचंद्र जी को सोने का हिरण का पीछा करके पकड़ने के लिए या मार करके लाने के लिए आदेश दिया। जब रामचंद्र जी ने मारीच को मारा उस समय में हा लक्ष्मण बोला। सीता जी बोलिए लक्ष्मण तुमको बुला रहे हैं, उनके ऊपर में संकट पड़ा है। उनके ऊपर में संकट नहीं पड़ सकता, मैं जानता हूं। ओ, उनके बाद में तुम मुझको रखना चाहता है, ये स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मण जी उनके आदेश से एक चक्र घर के चारों तरफ में काट दिया और वो चले गए। उधर गए, इधर रावण आया और सीता जी की चोरी हुई। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी की कबंध से भेंट हुई। वो विराट रूप धारण करके पेट उसका मुख पेट में और रामचंद्र जी को खा जाने के लिए आया। राम और लक्ष्मण जी ने उसे काट करके के और गड्ढे में भर दिया। अब सबरी के साथ में राम का मिलन हुआ। उसने बतलाया कि आप जाए वहां पर किष्किंधा में, सुग्रीव अपने भाई के कारण वो वहीं रहता है, कोई अभिशाप है, अभिशाप का कारण बाली वहां नहीं आ सकता, आप जाइए वहां पर उनसे मिलिए। वो आए वहां पर, हनुमान जी अपना रूप बदल करके आए नीचे। ओ, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उनकी भाषा सुन करके रामचंद्र जी मुग्ध हुए, बोले जैसे आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं ठीक बतलाइए। तब उन्होंने बतलाया जी मैं हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी उनको लेकर के ऋषिकेश पर पहुंचे और ऋषिकेश में पहुंचने पर सुग्रीव जी से इनकी मित्रता हुई। बाली को मारा और सुग्रीव ने कहा कि हम जब यहाँ पर बैठे थे एक दिन देखा ऊपर से कुछ अलंकार आए। लक्ष्मण से राम पूछा जी पहचानते हो? अब तो ये नहीं पहचानता हाथ की अंगूठी, केवल हाथ ही मैंने देखा है, पैर की अंगूठी, पैर की अंगूठी देखा है और ऊपर नहीं देखा। इसके बाद में वहां जब उनको पता लगा जे ये कौन ले गया, तो यहां से कोई लेकर के जा रहा था दक्षिण की तरफ में। फिर सुग्रीव से बाली से युद्ध, बाली का मरण, और इसके बाद में राज्य दे दिया उनको। और उन्होंने कहा कि मैं ये वर्षा ऋतु होते ही खत्म होते ही मैं पता लगाऊंगा, जहां भी होगी आकाश में पाताल में मैं पता लगा करके आपको बतलाऊंगा। खत्म हो गया समय, तभी नहीं हुआ, तब लक्ष्मण जी आए और देखा जैसे वो नाच गान में मस्त है, तब उन्होंने जब धनुष दिखलाया तो डर के मारे आया, कहा जा आज ही मैं भेजता हूं। तब उन्होंने भरत हनुमान जी को, सुग्रीव
अंगद को
और सब जामवंत को भेजा। वो लोग वहां गए, हनुमान जी को कहा समुद्र लांघ करके जाइए, समुद्र जी को लांघ करके गए और वहां पर लंका को जला करके खाक कर दिया। और सीता जी से बोला जी हमारे पीठ पर चलिए, नहीं रामचंद्र जी आएंगे तभी उनके साथ में चलना। उसी समय हनुमान जी ने उनको विश्वास के लिए, जब मैं राम का ही दूत हूँ, उनकी अंगूठी गिरा दी। उन्होंने देखा जी सचमुच में ये अंगूठी ही है रामचंद्र की। हनुमान जी ने मशक के समान रूप धारण करके सारे जगह में देखा। रात में जब वहीं पर देखा जे राम राम कोई कह रहा है, तो नीचे उतरे देखा जे कौन है, देखा जे विभीषण जी है। तुम ये इस पुरी में भी राम राम कर रहा है, मैं सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूँ, आप बतला सकते हैं। उन्होंने कहा जे यही अशोक बात क्या में है, किसी प्रकार से जीवन धारण कर। रावण रामचंद्र जी का सिर काट कर ले आया और सीता जी को दे रहा, वो तो विलाप करने लगी, किंतु थोड़ी देर में देखा जो उसका कोई रावण का कोई नौकर आकर जल्दी चलिए नहीं तो वहां पर आक्रमण हो रहा है। फिर उसकी माया कट गई, न सिर न कुछ। फिर लौट गया कि समुद्र को बांध करके, और रामचंद्र जी ने लंका पार किया और वहां पर पार करके रावण को वंश ध्वंस करके, और सीता जी को फिर बुलाया। सीता जी को बुलाने के बाद में बोला जैसे तुम्हारी जहां इच्छा तहां चली जाओ। उन्होंने मैं कहा जाऊं, पहले जानती तो मैं पहले ही नहीं आती। अंत में लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा जे चिता करो बनाओ। जब चिता बनाया और उसमें सीता जी गई और जली नहीं, और देवताओं ने सीता जी राम से कहा जे सीता जी परम पवित्र हैं, आप इनको ग्रहण। महाराज दशरथ भी कहीं थे, वो आए और बोले जैसे ये पवित्र है आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार से राम की कथा हो रही थी तो वक्ता कह रहा है, बोल रहा है और उसकी कथा ही शेष नहीं हो रही। कहते बार बार हम कह रहे हैं ना, मालिक हम हैं, हमारी कथा इच्छा के अनुसार में तुम संक्षेप में करो, और संक्षेप करो, तूने और क्या
कहना,
तो बोली हनुमान लंप दिलो,
एक लंप दिलो
और सीता के ऊपर हटते ये पारे।
दामोदर आया है,
दामोदर
ट्रांसलेशन दामोस्वामी
Dhamodar Maharaj. So, Dhamodar went to Nandigam, taking the shoes of Ramchandra upon his head. And for 40 years he resided there, and then how to run the country, he would ask all questions to the shoes of Sri Ramchandra. One time KKA came there, "Oh my dear son, please call me mother once." But Bharat refused. Then Ramchandra met with Augusta Rishi, who gave him a magic arrow. And by that arrow, Ram managed to kill Ravan. Then Supanika met with Ramchandra, and being attached to his beauty, she approached him for marriage. But on the inspiration of Ram, Lakshman cut off her nose and ears. Karan Dushan went there to avenge Supanika, the sister of Ravan, but they were also killed. Then Supanika said, "Oh Ravan, Sita is very attractive. In order to kidnap her, I went there to take her for you. Therefore, you please make some arrangement." Therefore, Ravan went to Marich. And you know the rest of the history. Marich took the form of a golden deer, and Sita asked, "Oh, please bring that deer, dead or alive." So Ramchandra chased that golden deer, and when he killed Marich, he called out in the voice of Ramchandra, "Oh Lakshman, save me." Again and again, Sita said, "Go and save your brother." But Lakshman said, "Even the demigods combined cannot hurt my brother." And she said, "I know your plan, you want to enjoy me." Therefore, Lakshman was forced to go. And when, in the absence of Lakshman, Sita was kidnapped by Ravan. Then Ram and Lakshman went searching for Sita. They killed the demon, Kumbhanda. All he was a stomach with a mouth. When Ram and Lakshman killed him, then Kumbhanda told him about, "You make friendship with Sugriv, then you can get back your wife." They went to meet Sugriv, and Sugriv sent Hanuman, his messenger, in a disguised form. Hearing the speech of Hanuman, Ram became deeply impressed. "Who are you? Please reveal your real form." "I am Hanuman." Ram made friends with Sugriv, and they brought the ornaments that had been thrown by Sita when she was being kidnapped by Ravan. When they showed the ornaments to Lakshman, he could not recognize them. Only he could recognize some toe rings. Sita had been taken to the south. Therefore, Hanuman, Anga, Jambavan, and many monkeys went to the south. Hanuman jumped to Lanka, and there he met Vibhasan, who was chanting the name Ram, Ram, Ram. Hanuman went there in a very minuscule form, and he said to Vibhasan, "You are chanting the name Ram here. I am looking for Sita." Then Vibhasan said, "Oh, she is there. She is there somehow, and they saw Bhattaka maintaining her life." Then Hanuman met with Sita. He said, "Oh Devi, sit on my back. I will take you home." She said, "No, only Ram can save me." Then Hanuman burned Lanka to ashes and returned back. Ramchandra came there. At first, Sugriv was not willing to go, but out of fear of Lakshman, they arranged everything. Ram controlled the ocean and then crossed the ocean to Lanka. And there he killed the entire dynasty of Ravan. When Sita came, then Ravan said to her, "You may go wherever you like. I have saved you to protect my honor, not to save you." She said that if I had known that before, I would have just committed suicide. Therefore, Lakshman was ordered to build a big funeral pyre. And when Sita entered that, she was not burnt. All the demigods and Dasar Maharaj himself came. Sita is very pure. Therefore, today we will hear Ram Katha. It is unlimited and there is no end. Go Premanandi. Thank you.
हाँ अरे बधाई बोलिए बोलना
बधाई अभी नहीं
बधाई क्या